ये आकाशवाणी है। अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोगों को जोड़ने वाले पर्यटन, जबकि पाकिस्तान आतंकी पर्यटन को बढ़ावा देता है। गुजरात के भुज में एक जनसभा में श्री मोदी ने पाकिस्तान पर निहित स्वार्थ के लिए देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई परियोजनाएं देश को हरित ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था में वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने बंदरगाह आधारित विकास, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, पर्यटन और युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
शिपिंग से जुड़ी कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। यहाँ नई जेटी बनाई गई है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर हो सके, इसके लिए कार्गो स्टोरेज सुविधा बनाई गई है। इस वर्ष बजट में हमने मैरिटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है। बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है। हम अपनी जरूरत के लिए भी और दुनिया की जरूरत के लिए भी भारत में ही बड़े जहाज बनाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 26 मई को वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये देश के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारत में गठबंधन की राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त कर दिया था और लोगों ने भाजपा को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया था। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कल कांगो की विदेश राजमंत्री थेरेसी कैकवाम्बा वैगनर से भेंट की। श्री शिंदे ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के साथ व्यापार और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले की अध्यक्षता में एक अन्य शिष्टमंडल ने कतर के आंतरिक मामलों के राजमंत्री शेख अब्दुल अजीज बिन फैजल बिन मोहम्मद अल थानी से मुलाकात की। सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत के पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि पूरा आतंकी मॉड्यूल पड़ोस से संचालित किया जा रहा था। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने सियोल में दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली की राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष सुंग दुतिये जोंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के स्वागत में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म रखे जाने की घोषणा की है। सम्मेलन की थीम भविष्य को आकार देने तथा उद्योग और बुनियादी ढांचे से लेकर समाज और संवहनीयता तक सभी क्षेत्रों में वास्तविक परिवर्तनकारी बदलाव सक्षम बनाने में नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। श्री सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में भारत क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। भारत आज उन शीर्ष 6 देशों में शामिल है जो 6G पेटेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्री जुआल ओराम ने कहा है कि सरकार ने पिछले एक दशक में देश में जनजातीय लोगों की स्थिति में सुधार के लिए कई पहल लागू किए हैं। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में श्री ओराम ने जनजातीय समुदायों के कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा की। आईपीएल 2020 क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर शीर्ष 2 में पहुंचकर पहले क्वालिफायर में जगह बना ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।